नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग चे लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए KL राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिन्दुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।